शांति। बहुत सुंदर अभी ये गीत सुन रहे थे कि भगवान ने हमें हीरे जैसा जीवन दिया और इस जीवन में मोती जैसा मन दिया है। कितने सुंदर भाव है। और जब हम अपने जीवन को, मन को इन्हीं आंखों से देखने लगते हैं तो हमारा जीवन भी धन्य धन्य हो जाता है। जीवन का सदुपयोग करना सहज हो जाता है। सकारात्मक जीवन शैली बनानी नहीं पड़ती, लेकिन स्वतः ऐसा जीवन हमारा हो जाता है। योग करते हैं जब, और उस ध्यान के माध्यम से जब मन को एकाग्र करते हैं तो इतना कोई ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है कि आज हमने सोचा माना तुरंत ही दूसरे दिन से आरंभ हो जाएगा, मन लग जाएगा। नहीं, कुछ अभ्यास करने की जरूरत है। और जितना उसको अभ्यास करते जाते हैं धीरे धीरे मन लगना आरंभ हो जाता है। लेकिन ये ध्यान की जो प्रक्रिया है उसमें चार अवस्थाएं हैं, जिन चार अवस्थाओं में से हमें गुजरना पड़ता है, जिसमें पहली अवस्था है, पहली स्टेज है विचार सागर मंथन अवस्था, या दूसरे शब्द में जिसको कहे तो मनन चिंतन की अवस्था। दूसरी अवस्था है इस योग की रूह रूहान की अवस्था। रूह आत्मा को कहा गया है और रूह आत्मा की परमात्मा के साथ एक वार्तालाप, जहां हम भगवान से बातें करना सीखते हैं, कम्युनिकेशन है। तीसरी अवस्था है एकाग्रता, कि जहां हमारा मन उस परमात्मा में लग जाए और धीरे धीरे मन उस प्यार में समाने लगे, उस याद में एकाग्रचित होने लगे, ये तीसरी अवस्था है। और चौथी अवस्था है जिसको हम कहते हैं अनुभूति की अवस्था, कि जहां जो अनुभव करना चाहे आत्मा उस अनुभव को सहज प्राप्त कर सके। तो ये चार अवस्था से हमें गुजरना पड़ता है, तब मन उस अनुभूति की अवस्था, या जिसको दूसरे शब्द में लोगों ने कहा साधना की अवस्था, एकदम जिसमें मन हमारा खो जाए, समा जाए, वो अवस्था को अनुभव करना है। परंतु जो प्रथम अवस्था है जिसको कहा विचार सागर मंथन, मनन चिंतन की अवस्था, या जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्टेम्प्लेशन, सेल्फ कॉन्टेम्प्लेशन, उसमें क्या होता है कि जैसे हम मेडिटेशन आरंभ करते हैं मन को परमात्मा में लगाने का प्रयत्न करते हैं, तो मन को जीवन भर हमने कभी संयम में लाने का पुरुषार्थ नहीं किया, तो एकदम से कोई कंट्रोल में नहीं आता है और एकदम करना भी नहीं चाहिए, नहीं तो उसका इफेक्ट कुछ गलत हो सकता है। इसलिए धीरे धीरे उस मन को ट्रेन करने की आवश्यकता है। कोई भी चीज सडन सप्रेस किया जाए वो हमेशा एक रिएक्शन क्रिएट करती है। शरीर में कोई बीमारी हो उसको भी एकदम एंटीबायोटिक्स आदि दे करके एकदम सप्रेस करने का प्रयत्न जब करते हैं तो वो कहीं और से निकल जाती है, दूसरे फॉर्म में, दूसरी बीमारी के रूप में बाहर आती है। इसलिए उसको धीरे धीरे भीतर से हील करना है, उसको ठीक करना है। मन हमेशा आदति हो गया है उछल कूद मचाने का, उसको एकदम से आप कंट्रोल करने जाएंगे, सप्रेस करने जाएंगे तो उल्टा रिएक्शन कैसे होता है। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूं कि कोई नदी हो या पानी का बहाव हो और कोई व्यक्ति आकर सोचे कि इतनी पानी की शक्ति वेस्ट जा रही है, इसलिए यहां एक दीवार बना देनी चाहिए ताकि वो पानी रुक जाए और फिर हम उस पानी का सदुपयोग करें। और ये सोच करके तुरंत एक दीवार बांधने का कार्य करने लगता है, पानी रुक जाएगा। लेकिन धीरे धीरे जो पानी वहां इकट्ठा हो रहा है उसका एक फोर्स है, जो फोर्स दीवार की शक्ति से बढ़ जाता है और वो दीवार को तोड़ करके नुकसान पहुंचा देता है। परंतु कोई व्यक्ति आकर वहां डैम बना दे, व्यवस्थित प्लानिंग करके डैम बनाए, वो पानी को भी रोक सकता है, उतना ही नहीं लेकिन उस पानी की शक्ति से हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन अगर वहां खड़ा कर दे तो बिजली भी उत्पन्न कर देगा और साथ ही साथ वो पानी को नहर के द्वारा अगर निकाल लेते हैं तो कितने एकड़ जमीन को पानी मिल जाता है, सिंचाई हो जाती है। ठीक इसी प्रकार हमारे मन के अंदर भी विचारों का एक बहाव है और अगर उसको विचार शून्य करने का प्रयत्न करते हैं या उसको रोकने का प्रयत्न करते हैं तो ये नासमझी है, वो दीवार बांधने वाली बात हो जाती है। और इसलिए थोड़ी देर के लिए तो आप विचार शून्य हो सकेंगे लेकिन मन का स्वभाव है सोचना, कितनी देर आप उसको दमन करके रख सकेंगे, कितनी देर विचारों को पकड़ के रख सकेंगे। और इसलिए बाद में वो एकदम मन उछलता है क्योंकि सारा दिन कोई हम मन को शून्य अवस्था में ले जाकर के नहीं बैठ सकते हैं, हमें कर्म योगी बनना है, कर्म में आना है। तो जब कर्म में आते हैं तो वो विचारों का प्रवाह जितनी देर हमने उसको रोका उतना डबल स्पीड से चलने लगता है और उस वक्त कभी कभी मानसिक रूप से असंतुलित हो जाता है इंसान। या जितनी देर उसको रोकने का प्रयत्न करते हैं फिर सिरदर्द चालू हो जाता है। तब कई लोग कहते हैं कि मेडिटेशन करने के बाद सिरदर्द क्यों होता है, क्योंकि सारा प्रेशर यहां इकट्ठा कर दिया भ्रुकुटी के मध्य में और इतना टेंस कर दिया तो जरूर सिरदर्द तो होना ही है। और वो विचारों की गति फिर बढ़ जाती है तो और भी नुकसान कर देती है। इसलिए जैसे कहा कि वो नदी के ऊपर एक बांध बांधने की आवश्यकता है कि जिस विचारों की शक्ति को हम एक सही दिशा में चैनलाइज कर दें। तो विचारों को बंद नहीं करना है, लेकिन विचारों को एक दिशा देनी है और दिशा देकर के उसको एक मोड़ दे देना है, जिस मोड़ के माध्यम से हम अपने जीवन में भी उन विचारों को सींचने लगते हैं, जिससे हमारा जीवन सुंदर बन जाता है, हीरे जैसा जीवन महसूस होने लगता है। लेकिन ये प्रथम अवस्था को जो कहा, विचार सागर मंथन अवस्था, कैसे करना है, दिशा कैसे देनी है, उस बात को अगर देखें तो शास्त्र में एक दृश्य हमारे सामने आता है कि हम सभी ने कई कथाओं में ये बात सुनी है कि एक बार देव और असुरों के बीच में संग्राम हुआ और उस वक्त सागर मंथन हुआ था। जब सागर मंथन हुआ तो विष निकलने लगा उसमें से और वो विष की बदबू से देवताएं उसको सह नहीं पाए तो एक एक करके बेहोश होने लग गए। थोड़े देवता जब रह गए तो तुरंत वो घबरा गए, शिवजी के पास पहुंचे और विनती करने लगे कि इस प्रकार अगर सागर मंथन के समय देवताओं का ऐसा हाल हुआ तो जो अमृत कलश निकलेगा वो असुर लोग ले जाएंगे और फिर अनर्थ हो जाएगा इस संसार के अंदर। तब कहा जाता है कि शिवजी वहां आते हैं और वो सारा जहर को पी लेते हैं, अपने कंठ में उसको समा लेते हैं। देवताओं को पुनः जागृत करते हैं, फिर वापस सागर मंथन होता है और धीरे धीरे करके उसमें से एक एक चीज निकलने लगती है और अंत में जाकर के वो अमृत कलश निकलता है। जो अमृत कलश मोहिनी स्वरूप धारण किए विष्णु जी आते हैं और उसने वो अमृत कलश को धारण कर लिया और धीरे धीरे करके देवों को पिलाना आरंभ किया, जिससे वो देवताएं अमर हो गए। ये कथा में एक दृश्य आता है, लेकिन वास्तव में ये मेडिटेशन की प्रथम अवस्था है। कैसे? तो प्रैक्टिकली अगर देखें कि जब हम मेडिटेशन में ध्यान में बैठते हैं तो जो हमारे मन के अंदर इतने सालों से बुरा चिंतन ये साधारण चिंतन करने की आदत पड़ी है वो कोई बंद नहीं हो जाती है, वो भी चलती रहती है। यहां मेडिटेशन में सुविचार दिए जा रहे हैं, आत्मचिंतन के परमात्म चिंतन के विचार दिए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी मन वो विचारों को सुनते हुए भी नेगेटिव चिंतन या व्यर्थ चिंतन करने का आदति हुआ है तो वो चिंतन भी साथ साथ चलता है। इंसान का मन जो है वो एक समुद्र की तरह है। समुद्र की तरह क्यों है, सागर की तरह क्यों है? क्योंकि जैसे तालाब होता है, तालाब में कभी कभी ऐसा समय आता है जो बिल्कुल हवा नहीं चलती है तो एकदम पानी स्थिर पूरा प्रतिबिंब आपको दिखाई देगा। कभी कभी नदी का बहाव भी जब कम हो जाता है तो नदी में भी एक स्थिरता आ जाती है। लेकिन सागर में कभी भी पानी स्थिर नहीं रहता है, लहरें चलती ही रहती है। कभी कभी छोटी छोटी लहरें चलती है, कंटिन्यू चलती रहती है, चलती रहती है। कभी कभी बड़ी बड़ी लहरें उठती है और कभी कभी तो तूफान आ जाता है। ठीक इसी प्रकार हमारा मन है, कोई भी क्षण ऐसा खाली नहीं जब विचारों की लहरें उसमें न चलती हो। सबकॉन्शियस लेवल पर भी ये लहरें चलती ही रहती है। कभी ये समय नहीं आता है कि एकदम स्थिर हो गया, नहीं। इसलिए ये मन भी एक सागर के जैसा है, जब कोई न कोई लहरें उसमें उठती रहती है। साधारण विचार जब चलते हैं तो छोटी छोटी लहरें होती है। कभी देखो तो मन परेशान होने लगता है, कोई बात का टेंशन होने लगता है, तो बड़ी बड़ी लहरें उठना चालू होती है। और जब एकदम मन परेशान हो गया, कोई ऐसी समस्या आ गई, तो तूफान खड़ा हो जाता है मन के अंदर में। इसलिए हमारा मन भी एक सागर की तरह है, जिसमें अच्छे विचार देवों की तरह है और बुरे विचार ये असुर के बराबर है। और ये दोनों के बीच में एक संघर्ष चलता है, एक सागर मंथन होता है। राजयोग के माध्यम से जब हमारे जीवन के अंदर एक जागृति आने लगती है, अपनी आत्मा की वास्तविकता के विषय में, और मन में जैसे ही ये विचार आने लगते हैं कि सचमुच कितनी मेंटल एनर्जी व्यर्थ और नेगेटिव विचारों में हमारी व्यर्थ जा रही है, तब हम अपने मन को जैसे ही मोड़ देना चालू करते हैं कि अच्छे सकारात्मक विचार करें, तो वो बुरे विचार या साधारण विचार शांत नहीं बैठते हैं, वो भी खड़े होते हैं। और इस तरह से ये दोनों विचारों में एक सागर मंथन, मन का सागर मंथन आरंभ होता है। और ये सागर मंथन में जो अच्छे विचार है, सुविचार है, सकारात्मक विचार है, वो धीरे धीरे जैसे बेहोश होने लगते हैं, क्योंकि नकारात्मक विचारों का फोर्स अधिक है। जीवन भर हमने कभी अपने विचारों पर ध्यान नहीं दिया और इसलिए मन इतना आदती हो गया नेगेटिव सोचने का कि हमारा ख्याल भी नहीं चलता है कि कैसे नेगेटिव विचार चलते रहते हैं। इतना मन के ऊपर हावी है वो। और जब जागृति आती है तब अंतर करने लग जाते हैं कि हाँ, ये विचार अच्छे हैं, ये विचार बुरे हैं। लेकिन जैसे ही मन को ध्यान में एकाग्र करना आरंभ करते हैं तो नकारात्मक विचार भी उठने लगते हैं, उनका फोर्स भी बढ़ने लगता है और वो जहर, वो विष निकालने लगता है। ये मन रूपी सागर में से सबसे प्रथम निकलता है तो विष निकलता है। कभी कभी ऐसे नेगेटिव विचार भी आएंगे जो कभी नहीं आए हो, उस वक्त कई लोग घबरा जाते हैं कि पता नहीं ऐसे विचार पहले तो मुझे कभी नहीं आए, आज अचानक कैसे आ रहे हैं, पता नहीं मेरा मेडिटेशन सही है या नहीं है, और घबरा करके मेडिटेशन को छोड़ देते। छोड़ो नहीं, ये आएंगे। ऐसे नहीं कि आज दिन तक कभी नहीं आए और आज आए, नहीं, आते थे पहले उसके विषय में कोई जागृति नहीं थी, इसलिए उसको पालते गए कि ये तो इंसान के लिए स्वाभाविक है, ये विचार तो चलेंगे ही, और ऐसे करके उसको पालते गए अपने मन के अंदर। जैसे कोई भी चीज का मंथन आरंभ करो, छाछ को भी वलोना चालू करो, तो क्या होता है, नीचे की चीजें ऊपर आने लगती है। ठीक इसी प्रकार हम भी अपने मन का मंथन आरंभ कर रहे हैं, तो जो नेगेटिव विचार इतने सालों से हमने किए थे या आए थे, जिसके प्रति कोई जागृति नहीं थी, वो नीचे बैठे हुए थे, और अब जब जागृति आए और अच्छे विचार आरंभ करते हैं, तब वो नीचे बैठे हुए फिर उठने लगते हैं और ऊपर आने लगते हैं। इसलिए उससे घबराओ नहीं कि ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ, आज क्यों ये विचार आ रहे हैं, आएंगे। जैसे वो होम्योपैथी दवाई देने वाले या आयुर्वेदिक मेडिसिन, किसी को स्किन रैशेस हुए हो और उसके लिए जब देते हैं तो डॉक्टर या वैद्य भी ये कहते हैं कि जैसे ही आप ये दवाई लेना चालू करेंगे, ये बीमारी पहले बढ़ेगी, क्योंकि जड़ से निकल रही, जो इतने साल पुराने अंदर में है उसकी जड़ें वो निकलेगी, इसलिए ये बीमारी बढ़ेगी, लेकिन उसके बाद जब निकल जाएंगी तो साफ हो जाएगा, फिर कभी नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार आज दिन तक कभी यह जागृति नहीं आई, और आज जब ये जागृति आई और ये अच्छे विचार और बुरे विचारों का सागर मंथन आरंभ होता है, तो वो बुरे विचारों का विष मन के अंदर से निकलने लगता है। उसे घबराओ नहीं, लेकिन ऐसे समय पर क्या करो, शिवजी को याद करो। परमात्मा शिव, ज्योतिर्बिंदु परमात्मा जो है, उसको याद करो और वो विष भी उसको अर्पित कर दो। आप सोचेंगे विष भगवान को कैसे अर्पित करें, भगवान के सामने बैठ करके बुरे विचार करके हम उसको समर्पित कैसे करें? लेकिन आप देखेंगे कि देवताओं के मंदिर में हमेशा सुगंधित फूल चढ़ाए जाते हैं, लेकिन शिवजी के मंदिर में कौन से फूल चढ़ाए जाते हैं? धतूरे के, जो सबसे जहरीले हैं, यही फूल उसको अर्पित किया हुआ है, क्योंकि हमारे मन के अंदर जो जहर है नकारात्मकता का, उसको हम अर्पित करते हैं, उसको भी समर्पित कर दो, क्योंकि जब वो विचारों को भी परमात्मा शिव को समर्पित कर देंगे, फिर धीरे धीरे अपने मन के अंदर एक परिवर्तन महसूस होगा, फिर वापस सागर मंथन आरंभ करो। देखेंगे जैसे जैसे आप जितना वो विष निकलता है अर्पित करते जाते हैं, अर्पित करते जाते हैं, वो विष खत्म हो जाएगा, और फिर अपने ही विचारों में धीरे धीरे एक एक चीज निकलना आरंभ होती है, और जब उसको स्वीकार करते जाते हैं देव, अंत में जाकर के अपने ही विचारधारा में से वो अमृत तत्व निकलता है, वो अमृत कलश निकलता है, और जब वो अमृत कलश निकलता है तो लक्ष्मी जी ने उसको धारण किया, जो उन्होंने देवों को पिलाया। लक्ष्मी जी कौन है हमारे भीतर? हमारे भीतर लक्ष्मी जी जो है वो है हमारे लक्षण। जब भी घर में, किसी के घर में शादी होती है और बहू आती है, अगर अच्छे संस्कारों वाली होती है तो क्या कहते हैं, सुलक्ष्मी आई है, और बुरे संस्कारों वाली होती है तो क्या कहते हैं, कुलक्ष्मी है। तो लक्ष्मी किसको कहा? जिसके लक्षण जैसे हैं उस हिसाब से उसको लक्षण के आधार पर लक्ष्मी कहा। वैसे ही हमारे जीवन में जो लक्षण है वो उस अमृत को धारण करते हैं कि जो फिर दैवी संस्कारों को पिलाना आरंभ करते, जिससे वो देवता अमर हो गए। बहुत सुंदर शास्त्र में ये बात जो है उसका निरूपण है। और ये निरूपण जब हम वास्तविक जीवन में अनुभव करने लगते हैं तो वो सिर्फ वो शास्त्र की कथा नहीं रह जाती है, लेकिन हमारे जीवन की वास्तविकता हो जाती है। इसलिए वो अमृत कलश को प्राप्त करना है तो आरंभ में वो विष तो निकलेगा, और वो विष जब निकलता है तो उसके तरफ ध्यान नहीं दो, उसको अर्पित करते जाओ, परमात्मा को चढ़ा दो, समर्पित कर दो, फिर वापस मेडिटेशन आरंभ करो। इस तरह से कुछ समय तक आपको करना पड़ेगा, जब संपूर्ण वो विष अंदर से निकल करके समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए ये प्रथम अवस्था से हर एक व्यक्ति को गुजरना पड़ता है। ये मेडिटेशन की पहली अवस्था है। सकारात्मक जीवन शैली के लिए, सकारात्मक चिंतन करने के लिए ये प्रक्रिया से हमें गुजरना पड़ता है, और तब जाकर के हम अपने मन के अंदर संपूर्ण रीति से देख सकेंगे कैसे विचारों में एक परिवर्तन आ जाता। और वो अमृत धार जब बहने लगती है, जीवन इतना सुंदर हो जाता है, जो गीत में सुना, हीरे जैसा जीवन और मोती जैसा मन बन जाता है। ये वास्तविकता है। जैसे अपने घर में कोई व्यक्ति आता रहा रोज, उसको हम मित्र समझते हुए रोज उसकी खातरी करते रहे, रोज चाय नाश्ता खिलाते पिलाते रहे, तो आएगा ना। बाद में जब आपको पता चलता है कि ये जो रोज मेरे पास आकर के मुझे बहकाने वाली बातें सुना सुना करके चाय नाश्ता करता रहा, ये तो वास्तव में मेरा अंदर से देवाला निकाल रहा है। अब जब पता चला तो उसके बाद उसको चाय नाश्ता खिलाएंगे पिलाएंगे नहीं, वो आएगा भी तो भी दूसरे कार्य में व्यस्त हो जाएंगे, उसको अटेंड ही नहीं करेंगे। तो धीरे धीरे वो समझ जाता है कि अब इसको शायद मेरी वास्तविकता का पता चल गया है, अब मुझे कोई दूसरा ग्राहक ढूंढना पड़ेगा, फिर चला जाता है। ठीक इसी तरह ये नकारात्मक विचार जिसको इतने जीवन भर हम पालते रहे, उसको चाय नाश्ता देकर खातरी करते रहे, बिठाते रहे, अपने मन के अंदर स्थान देते रहे, अब घर कर गया है वो, अब पता चला कि ये नकारात्मक विचार तो मेरी आत्मा की शक्ति का दिवाला निकाल रहा है। अब क्या करे, नकारात्मक विचार पावरफुल है तो वो आएंगे तो जरूर, लेकिन उसको अटेंड नहीं करो, उसके तरफ ध्यान नहीं दो। मेडिटेशन में भी जब बैठे हैं वो विचार आते हैं, आप ध्यान नहीं दो, तुरंत ये जागृति ले आओ और अपने मन को परमात्मा में एकाग्र करना शुरू कर दो। धीरे धीरे वो विचार खत्म हो जाएंगे, वो जो संस्कार बने हुए हैं नकारात्मक सोचने का वो खत्म हो जाएगा, और फिर धीरे धीरे सकारात्मकता जीवन में कायम हो जाएगी। तो ये राजयोग की प्रथम अवस्था है। दूसरी अवस्था जिसको कहा रूहान की अवस्था, आत्मा की परमात्मा के साथ एक वार्तालाप, कम्युनिकेशन, जो वार्तालाप में कोई न कोई आधार, कल देखा हमने संबंध चाहिए, चार आधार हमने देखे, परिचय, संबंध, स्नेह और प्राप्ति। राजयोग में भी अब तक परमात्मा के साथ वो वार्तालाप नहीं होती थी, कारण क्या, परिचय ही नहीं था। किसको परमात्मा माने, अनेक देवी देवताओं के चित्र है, किसके साथ बातचीत करे, किसको मैं अपना समझूं, ये पता ही नहीं था। और इसलिए कभी वो समीपता का, वो स्नेह भरा संबंध का अनुभव नहीं कर पाए। परमात्मा के साथ हमारी रू रूहान नहीं हो सकी। अब परिचय स्पष्ट हो गया, परमात्मा कौन है, देवताएं कौन है, ये परिचय क्लियर हो गया। अब जब परिचय क्लियर हो गया तो मेरा उसके साथ कोई संबंध है, संबंध को स्पष्ट करो, मेरा ईश्वर के साथ कोई संबंध है या नहीं है, है? कौन सा संबंध है हमारा ईश्वर के साथ, कौन सा संबंध है, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, हाँ? बाप बेटे का संबंध है, पिता पुत्र का संबंध है, सचमुच कभी हमने पुत्र बन करके उस पिता को याद किया? आज एक राजा का बेटा राजकुमार होता है, जब उसको पता है कि मेरा पिता राजा है, तो उसका उठना, बैठना, बोलना, चलना, फिरना कैसा होता है? राजसी, राजसी होता है। किसी को सिखाने की आवश्यकता नहीं होती है कि तुमको ऐसे बैठना है, ऐसे चलना है, ऐसे बोलना है, ऐसे व्यवहार करना है, नहीं, क्योंकि उसको पता है कि मेरा पिता राजा है, तो स्वतः वो संस्कार उसके अंदर आ जाते हैं। अगर मेरा पिता परमात्मा संसार की सर्वोच्च हस्ती हो और मैं उसकी संतान, मैं उसका पुत्र हूं, तो मेरा उठना, बैठना, बोलना, चलना, फिरना कैसा है? परमात्मा के बच्चे कहलाने जैसा है, है, है कि नहीं है, क्या कहेंगे, है नहीं है? तो कहां है संबंध? खाली मंदिरों में गाने तक, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, बस, और गा लिया, तुम मात पिता हम बालक तेरे, बाहर निकले, और भगवान के बच्चे जैसा हमारा कोई कर्म, व्यवहार, उठना, बैठना, चलना, बोलना नहीं है, तो खाली मंदिरों में गाने तक ना, मंदिरों में जाकर के तो हम बहुत बड़ी बड़ी बातें गा के आते हैं कि हे प्रभु, आप तो इतने ऊंच सर्वश्रेष्ठ हो, ऊंचे ते ऊंची हस्ती, और मैं नीच पापी खलकामी, ऐसी प्रार्थना करके आते हैं, और मंदिर से बाहर आया और किसी ने हमको कह दिया तुम नीच पापी खलकामी है, तो क्या होता है, कितना गुस्सा आ जाता है, तुम कौन होता है, अरे तू अब भी अपने मुख से बोल के आया अंदर में, तो क्या वो तेरे सामने थोड़ी था, वो तो भगवान के सामने था, तो भगवान के सामने कुछ और मनुष्य के सामने कुछ और, अब मेरी वास्तविकता क्या है, ये मुझे पता ही नहीं कि जो मैंने भगवान के सामने वर्णन किया वो मेरी वास्तविकता है, या जो मैं दुनिया के आगे अपने आप को दिखा रहा हूं वो मेरी वास्तविकता है, क्या है मेरी वास्तविकता? और इसलिए न अपने को पहचाना न उसको पहचाना, तो जीवन कैसा हो गया। इसलिए जीवन में जो आनंद आना चाहिए वो आनंद नहीं आया, क्योंकि भगवान के सामने कुछ और गाते रहे और दुनिया के आगे कुछ और दिखाते रहे, पता ही नहीं कि मेरी वास्तविकता कौन सी है। लेकिन तब कई बार कई लोग कहते हैं, अरे भगवान के सामने तो निर्माणता ही दिखानी चाहिए ना, तो भगवान के सामने निर्माणता दिखाओ और दुनिया के सामने अभिमान दिखाओ, ऐसा। इसलिए कितना अज्ञान है कि न हम अपनी वास्तविकता को जानते हैं न हम ईश्वर की वास्तविकता को जानते हैं। अब स्पष्ट हो गया कि वो कौन मैं कौन। अब मैं अगर उसकी संतान हूं तो वो अधिकार, आज जैसे एक छोटा बच्चा होता है, वो कहीं आंगन में अगर खेल रहा होता है और बाहर में एक गाड़ी पड़ी हो और किसी ने आकर पूछा ये किसकी गाड़ी है, जिस बच्चे के पिता की गाड़ी होती है ना, तुरंत खड़ा हो जाता है, मेरी गाड़ी है। क्यों? उस मालिक के पास जाए, बच्चा भी जाए और वो नौकर भी जाए, नौकर जाकर के मालिक से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करके कहता है, साहब 100 रुपया चाहिए था, आप निकाल कर दे देंगे? नहीं, पूछेंगे क्यों चाहिए। उसने जो कारण बताया वो कार्य 25 रुपया में हो जाता है, तो आप क्या करेंगे? कहेंगे वैसे ये कार्य तेरा 25 रुपया में हो ही जाएगा, फिर भी 50 ले जाओ, मांगने से आधा मिल गया। और वहीं अगर बच्चा आया और उसने अधिकार से कहा मुझे 10 रुपया चाहिए, और आपके पास जेब में 10 रुपया छुट्टा नहीं है, 50 की नोट है, तो क्या करेंगे? दे देंगे? ये अंतर है एक दास और बच्चे में। तो भगवान के सामने भी जब हम जाते हैं तो क्या गाते हैं? हे प्रभु, मैं तो आपके चरणों का दास हूं। अब दास हूं या बच्चा हूं यही पता नहीं। दास बनकर के जाएंगे तो कितना मिलेगा? मांगने से आधा मिलेगा, कभी नहीं भी मिलेगा। कहेंगे ठीक है हम ही ले आएंगे तेरे लिए, और अच्छी क्वालिटी का ले आएंगे, ये कह करके बिल्कुल नहीं देंगे उसको। और बच्चा बन जाओ तो कितना मिलेगा? बच्चे को मांगने की भी जरूरत नहीं। तब कहा जाता है बिन मांगे मोती मिले, मांगत मिले न भीख। और इसलिए भगवान के सामने जब जाओ तो क्या बनकर के जाओ? दास बनकर जाओ या बच्चे बनकर जाओ? क्या बनना चाहते? बच्चे। क्योंकि दास बनकर जाएंगे ना तो सदा उदास रहेंगे, कभी सेटिस्फाई नहीं होंगे जीवन में। जीवन में इसीलिए उदासी बढ़ती गई क्योंकि दास बनकर के रहे। अब मैं परमात्मा की संतान, जब संतान बन जाओ तो एक नशा जीवन के अंदर आता है, अभिमान का नशा नहीं होता, लेकिन जिसको कहते हैं नारायणी नशा, जो बहुत श्रेष्ठ होता है, सुखदायी होता है। तो इसलिए भगवान के साथ भी संबंध जोड़ करके उसको प्यार से याद करो, बहुत सुंदर अनुभव होगा। दुनिया के अंदर जितने भी शिरोमणि भक्त आत्माएं हो गए, उन्होंने अगर भगवान को पा लिया, अनुभव किया, तो ये कोई न कोई संबंधों के आधार पर। प्रहलाद ने उसके साथ जब मात पिता का संबंध जोड़ा तो वो भी हर वक्त मात पिता बनकर उसकी रक्षा करते रहे। नरसिंह मेहता ने जब उसके साथ सखा भाव का संबंध जोड़ा तो वो भी मित्र बन करके कुंवर बाई का मामेरू कर दिया, पता भी नहीं चलने दिया उसको। मीराबाई ने जब उसको प्रियतम के रूप में देखा तो वो प्रियतम बन गया, जहर का कटोरा अमृत हो गया। और सती अनसुया ने जब उसको बच्चे रूप में देखा तो वो बच्चा भी बन गया, बच्चे का सुख भी अनुभव करा दिया। तो भगवान के साथ जिसने जो रूप से उसको देखा उसका अनुभव भगवान ने करा दिया, चाहे किसी देवता के स्वरूप में भी क्यों नहीं करा दिया, लेकिन करा लिया। कराने वाला परमात्मा है, क्योंकि जो श्रद्धा और भक्ति के साथ वो उसको याद करता है, भक्ति माना प्रेम। तो जो श्रद्धा और भक्ति के साथ उसको याद करता है उसको वो प्राप्ति न हो ऐसा हो नहीं सकता है। इसलिए यही हमारे जीवन में एक मिसिंग लिंक थी, और इसलिए भगवान की समीपता का भी हम अनुभव नहीं कर पाए, क्योंकि संबंध ही स्पष्ट नहीं किया। तो कितने संबंध जोड़ सकते हैं हम उसके साथ? दुनिया में मनुष्य के अति निकट के 6 संबंध होते हैं, जिसकी याद सहज और स्वाभाविक रीति से आती रहती है। परमात्मा के साथ भी ये 6 संबंध हम जोड़ सकते हैं, और वो 6 संबंधों के आधार पर उसको याद करना, प्रेम से उसमें समा जाना, खो जाना आसान हो जाएगा। सबसे पहला संबंध है माता पिता और बच्चे का, बहुत सुंदर संबंध है ये, जो स्वाभाविक जोड़ सकते हैं। लेकिन जब उस माता पिता को याद करते हैं तो कैसे याद करना होता है? आज अगर मैं आपको कहूं कि आप अपने शारीरिक माता पिता को याद करो, सहज है या मुश्किल है? सहज है या मुश्किल है? सहज है ना? जब माता पिता को याद करते हैं तो कैसे याद करते हैं, क्या सोचते हैं उस वक्त? माता पिता को याद करने समय हम उनके गुणों को सोचते हैं, उसमें कितनी त्याग की भावना थी, कितना सैक्रिफाइस किया, कितना प्यार दिया, तो ये गुणों के आधार पर उसको याद करते हैं। कभी कभी दो छोटे बच्चे स्कूल में होते हैं ना, उनकी बातें कभी सुनो, बड़ी अच्छी लगती है। एक बच्चा कहता है, मेरी मम्मी मुझे इतना प्यार करती है, इतना प्यार करती है, देखो मेरे लिए कैसे ये चीज लेके आई। तो दूसरा बच्चा उस वक्त शांत नहीं बैठता है, वो क्या कहता है, मेरी मम्मी भी मुझे बहुत प्यार करती है, मेरे लिए भी ये चीज लाने वाली है, ऐसी ही लाने वाली है। फिर घर में आके वो डिमांड करता है, क्यों? क्योंकि उसको अपने दोस्त को दिखाना है कि मेरी मम्मी भी मुझे कितना प्यार करती है। लेकिन उस वक्त जब माता पिता उस बच्चे की भावना को समझते नहीं है, वो उसको व्यक्त नहीं करता है कि मुझे दूसरे दिन अपने दोस्त को जाकर दिखाना है कि मेरे मम्मी पापा भी मुझे कितना प्यार करते हैं, इसलिए वो डिमांड करता है, जिद करता है, नहीं मुझे भी ये चीज चाहिए। उस वक्त माता पिता क्या करते हैं, उसको थप्पड़ मारते हैं, बहुत बड़ी गलती करते हैं आप। उस वक्त जब उस बच्चे को थप्पड़ मारते हैं तब उसको महसूस होता है, मेरे मम्मी पापा मुझे प्यार नहीं करते हैं। ये थप्पड़ उसके हृदय पर, उसके गाल पर नहीं लगा है, उसकी भावनाओं पर लगा है। और उस वक्त उसको यही लगता है कि मेरे दोस्त की माँ उसको ज्यादा प्यार करती है और मेरी माँ मुझे प्यार नहीं करती है। और दूसरे दिन जब जाता है स्कूल में, उसका दोस्त उसको पूछता है, तेरी मम्मी लाई? उस वक्त वो थप्पड़ फिर उसको महसूस होती है, और वो थप्पड़ जो है जीवन भर उसको याद रहती है। इसलिए उस वक्त उसको थप्पड़ नहीं मारो, उस वक्त उसको प्यार से मोड़ने का प्रयत्न करो। इतना प्यार दे दो उसको जो अगर नहीं भी ला करके दिया तो भी उसको लगता है कि नहीं, मेरी मम्मी मुझे ज्यादा प्यार करती है। इसीलिए फिर बाद में वो अपने माँ पिता को चाहता नहीं है, वो थप्पड़ ऐसी उसको याद रहती है। बाद में आप कुछ करने के लिए उसको कहते भी है तो भी वो मना कर देता है कि नहीं, करने से फायदा क्या, वो मुझे चाहते तो है ही नहीं। और इसलिए जब धीरे धीरे वो बड़ा होता है और ये बात उसके मन के अंदर घर करने लगती है, तब उसके अंदर अकेलापन की महसूसता आती है। आज दुनिया के अंदर देखते हैं यंगस्टर्स सुसाइड करते हैं। कौन से यंगस्टर्स सुसाइड करते हैं? माता पिता भले उसके बाद कितना भी रोए करे कि हमने उसको सब कुछ दिया, हमने कभी उसको कोई बात ऐसी कही नहीं, फिर ये बच्चे ने सुसाइड कैसे किया? लेकिन वो थप्पड़ धीरे धीरे उसकी जो चोट है उसके मन के अंदर अंदर ही अंदर बढ़ रही थी और उसका एहसास माता पिता को उस वक्त नहीं होता है। इसलिए माता पिता ऐसा व्यवहार आज के युग में बच्चों के साथ करे जैसे एक फ्रेंडशिप, यही कहा जाता है। तब कहा कि परमात्मा अगर हमारा माता पिता है तो वो माता पिता भी हमें बहुत प्यार करता है, इतना प्यार करता है वो कभी थप्पड़ नहीं मारता है। एक कहानी याद आती है कि एक बार एक व्यक्ति को स्वप्न आता है और स्वप्न में अपनी जीवन यात्रा को देखता है। ऐसे लगता है जैसे समुद्र के किनारे किनारे चल रहा है। ध्यान से देखता है तो कहीं कहीं चार पैरों के निशान हैं, कहीं कहीं दो पैरों के निशान हैं। और ध्यान से देखता है तो जब उसके जीवन के सुख भरे दिन थे तब चार पैरों के निशान हैं, और जब उसके जीवन के दुख भरे दिन है, कष्टों भरे दिन है, तो सिर्फ दो निशान दिखाई दिया। मन ही मन वो भगवान से बातें करता है कि हे प्रभु, मैंने तो सोचा था कि तुम हर वक्त मेरे साथ हो, लेकिन आज ये क्या देख रहा हूं कि मेरे सुख भरे दिन में तुम साथ साथ चलते रहे। ये दो तेरे निशान, दो मेरे निशान, लेकिन जब मेरे दुख भरे दिन आए, मेरे कष्टों भरे दिन आए, जब मुझे सबसे ज्यादा तेरी आवश्यकता थी, तब तुम मुझे कहां छोड़ के चले गए थे? ये दो ही निशान क्यों दिखाई दे रहे? भगवान मुस्कुराता है और उस वक्त कहता है, नहीं बेटा, तब भी मैं तेरे साथ था। तेरे सुख भरे दिन में, तेरे उमंग उत्साह भरे दिन में तेरी अंगुली पकड़ के चल रहा था, इसलिए तुझे दो निशान तेरे और दो निशान मेरे दिखाई देते। लेकिन तेरे दुख भरे दिन में, तेरे कष्टों भरे दिन में तेरा दुख तेरा कष्ट मुझसे भी नहीं देखा गया, इसलिए मैं तुझे चलने का कष्ट नहीं देना चाहता था तो अपनी बाहों में उठा लिया। ये दो निशान जो दिखाई देते ना, तेरे नहीं मेरे हैं। ये है ईश्वर का प्यार। कभी अपने जीवन में पीछे मुड़ करके देखो कि जब भी जीवन में तकलीफ आई, जब भी जीवन में कोई ऐसी समस्या आई, उस वक्त जो सहन करने की शक्ति चाहिए थी, जो समस्या को पार करने की शक्ति चाहिए थी, वो कहां से मिली थी? इंसान तो आए, दो सहानुभूति के शब्द बोलकर चले गए, लेकिन शक्ति नहीं दे पाते हैं। शक्ति अगर दी तो वो किसने दी? जो बाद में एहसास होता है कि उस वक्त पता नहीं एक ऐसी अदृश्य शक्ति मिल रही थी जो जीवन के अंदर समा गई और उस इतनी बड़ी परीक्षा को आसानी से पार कर दिया। ये महसूस था है ना, तो ये शक्ति किसने दी? वो माता पिता इतना प्यार करता है हमें, लेकिन उसके बाद कभी उसका एहसान भी है नहीं, भूल जाते हैं या सोचते हैं कि अगर उसने मदद किया तो कौन सी बड़ी बात की। नहीं, भगवान इतना प्यार करता है कि जीवन की हर मुश्किल के समय वो हमारा साथ देने के लिए, हमें अपनी बाहों में उठाने लिए तैयार है। दूसरा संबंध है, जैसे बच्चा बड़ा होता है स्कूल में जाने लगता है, और स्कूल में जब जाता है तो उसका टीचर के साथ एक लगाव हो जाता है। घर में आता है तो किसकी बातें करता है, आज मेरे टीचर ने ये किया, आज मेरे टीचर ने ऐसा किया, मैं अपने टीचर का फेवरेट स्टूडेंट हूं, मुझे कैसे प्यार से बैठ करके ये बात सिखाई, इस प्रकार का वर्णन करता है। माँ बाप को टीचर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन बच्चे का प्यार है तो वर्णन करता जाता है। लेकिन उस वक्त भी माता पिता क्या कहते, बस बंद कर, नहीं क्या है तेरे टीचर की बातें। उसका प्यार जो है उस वक्त कुचलने लगते हैं, अरे नहीं करने दो, भले आप नहीं भी सुनो, लेकिन जो प्यार का एक अंकुर स्फुरित हुआ है उसको बाहर आने दो, उस वक्त उसको रोको नहीं, टोको नहीं। इस तरह कभी कभी जीवन के अंदर उसकी श्रद्धा जब उस टीचर में है, कोई बात ऐसी उसको लग जाएगी जो उसके जीवन को एक दिशा दे देगा, और वो बहुत ऊंची मंजिल पर पहुंच जाएगा। इसी तरह परमात्मा भी हमारा परम शिक्षक है। इतना ज्ञान कहां से आ रहा है सोचो, इतना ज्ञान देने वाला कौन है? कई बार कई लोग हमें भी पूछते हैं, बहन जी इतना ज्ञान कहां से आया जो लगातार इतने दिनों तक आप लोग बोल सकते हैं बिना कोई पोथी उठाए, और वर्णन करते जाते हैं और प्रैक्टिकल जीवन के साथ उसको जोड़ना सिखाते हैं, तो ये कहां से मिला? सोचो वो पढ़ाने वाला कैसा होगा जिसने एक एक को पढ़ा करके ऐसा बना दिया, वो टीचर कैसा होगा? दुनिया में एक टीचर एक स्टूडेंट का जीवन बना सकता है, लेकिन ये टीचर की सामर्थ्य देखो। जितनी भी बहनों से आप मिलेंगे, जो भी भाई से आप मिलेंगे, जो भी आने वाले भाई बहनों से भी मिलेंगे, लगता है एक एक ज्ञान सुनाने लगता ही जाता है, इतना ज्ञान आया कहां से? तो पढ़ाने वाला कितना समर्थ होगा जिसने एक एक को ऐसा बना दिया। तो ये ज्ञान का स्रोत स्वयं वो परमात्मा है, जो परम शिक्षक बनकर के ऐसी पढ़ाई पढ़ाता है कि जीवन में उतर जाती है, जीवन में उसका अमृत पान करते रहते हैं नित्य, और रोज पढ़ाई करते ही जाते हैं, तब जाकर के जीवन बनता जाता है। रेगुलर यहां डिस्कोर्स चलते ही रहते हैं, जो परमात्मा महावाक्य सुनाए जाते हैं, और वो महावाक्य का श्रवण जैसे जैसे करते जाते हैं नित्य, उतना ही आत्मा अपने आप में भरपूरता का अनुभव करती है, वो अमृत तत्व की प्राप्ति का अनुभव करती है। अगर आप भी ये अमृत तत्व को प्राप्त करना चाहते हो तो नित्य जो परमात्मा के महावाक्य सुनने को मिलते हैं उसका श्रवण करो, आनंद लो, फिर देखो जीवन कैसा हो जाता है। वही परमात्मा परम सतगुरु भी है। सतगुरु कोई और नहीं है। दुनिया में गुरु तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन सतगुरु एक ही होता है। जो गुरुओं का भी गुरु है वो है सतगुरु। जो आत्मा की श्रेष्ठ गति करने का मार्ग सिखाए वो है परम सतगुरु। परमात्मा वही परम सतगुरु भी है। जब वो अधर्म के समय अवतरित होते हैं तब जीवन को एक नई दिशा दे देते हैं, सदगति का मार्ग बता देते हैं। जब भी गुरु के सामने भी कोई शिष्य जाता है तो मन के अंदर भावना क्या होती है कि गुरु के आशीर्वाद के पात्र बन जाए, यही भावना बनी रहती है। परमात्मा भी हमारा परम सतगुरु है और उस सतगुरु परमात्मा के वरदानों के पात्र बनना ये भी बहुत बड़ा सौभाग्य है। जीवन में साधारण बात नहीं है, लेकिन वो परमात्मा जब भाग्य विधाता बनकर भाग्य का वरदान देता है तो उसको लेने की भी एक विधि होती है। और लेने की विधि क्या है पता है? परमात्मा जो भाग्य विधाता बनकर भाग्य का वरदान देता है सुबह सुबह में देता है, जिस समय के लिए कहा गया अमृत वेला, जिस समय अमृत का पान कर सकते हैं, आशीर्वाद वरदान अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं और भाग्य की लकीरें बदलने का अनुभव होता है। लेकिन उसी वक्त वो अमृत वेले का समय कौन सा है? 2:30 से 5 बजे तक उसका भाग्य बांटने का समय होता है। और उसी वक्त नींद भी बहुत अच्छी आती है, है ना? सारी रात तड़पते रहेंगे, नींद नहीं आएंगी, लेकिन 2:30 बजे के बाद जो नींद लगती है वो इतनी मीठी नींद होती है 5 बजे तक की कि उसमें सारी थकान मिट जाती है। तभी तो लोग जब भाग्य की बात करते हैं तो क्या कहते हैं कि भगवान जब भाग्य बांटने निकला था तब तुम सोए हुए थे क्या? क्योंकि उसी वक्त माया नहीं चाहती है कि ये भगवान के पास जाए, इसलिए वो मीठी लोरी दे करके सुला देती है। तब कहा जाता है जिन सोया तिन खोया, जिन जागा तिन पाया। जो माया को चैलेंज करके उठ जाता है और प्यार से उस परमात्मा सतगुरु को याद करता है, उसके वरदानों को पाने का एक अधिकार प्राप्त करता है, भाग्य पलटने का अनुभव होता है। इसलिए उसको कहा अमृत वेला, कि जब परमात्मा भाग्य खींचने की कलम आपके हाथ में पकड़ा देते हैं कि बेटे जितनी लंबी लकीर खींचना चाहो खींच लो, लेकिन उस वक्त अगर नींद आ गई ना, बैठे हैं भगवान को याद करने लेकिन झुटका आ गया तो क्या होगा? पेन हाथ में होती है, कलम हाथ में होती है, और जब झुटका आ जाता है तो क्या होता है? वो लकीर नीचे खींच जाती है। तो हम भी जब झुटके खाते हैं तो लकीर नीचे आ जाती है। फिर भगवान को दोष नहीं देना कि हे प्रभु तूने मेरा भाग्य ऐसे क्यों खींचा। भगवान कहेगा मैं तो कलम तेरे हाथ में पकड़ा दिया था, तुमने ऊपर नीचे करते रहे तो हम क्या करें। इसलिए अब अपने जीवन के अंदर अगर परमात्मा परम सतगुरु का वरदान पाना चाहते हो, पात्रता अपनी बनाना चाहते हैं, तो सुबह उठकर देखो। इतने दिन से आप सुबह उठकर क्या आ रहे हैं ना, कैसा अमृत पान कर रहे हैं परमात्मा के वो ज्ञान का आशीर्वाद का हाथ अपने ऊपर अनुभव कर रहे हैं। तो उसको नित्य बना करके रखो अपने जीवन में, फिर देखो वो जीवन कैसा बन जाता है। तो मां पिता का संबंध, टीचर और स्टूडेंट का संबंध और सदगुरु और शिष्य का संबंध, ये तीन संबंध ऐसे हैं जहां से हम लेते अधिक है देते कम है। लेकिन चौथा संबंध जो है वहां गिव एंड टेक होता है और वो है मित्र सखा या दोस्त का संबंध। ये भी एक बहुत प्यारा संबंध है। कभी दो दोस्त जब आपस में मिलते हैं और अगर बहुत समय के बाद मिले तो उनकी बातचीत को देखो, रात रात निकल जाती है, नींद नहीं आती है, बैठे रहते बातें करते समय का एहसास नहीं होता है। परमात्मा को भी कभी खुदा दोस्त बना करके तो देखो, उसके साथ इतनी बातें करेंगे आप जो बातें कभी कम नहीं होगी, समय का एहसास नहीं होगा, कहां चला गया वो समय पता नहीं चलेगा। एक बार एक भाई थे, हमें कुछ सेवा का कार्य था, उस भाई से हमने पूछा भैया थोड़ा टाइम है, तो कहा माफ करना बहन जी आज मेरे पास समय नहीं है, मैं बहुत बिजी हूं, कल संडे है, कल जितना भी समय आप कहेंगे हम आपको देंगे, जो भी सेवा होगी हम कर लेंगे। हमने कहा ठीक कोई बात नहीं। वो भाई चले वहां सेंटर से बाहर, जैसे गए कोई उनका दोस्त मिल गया, बातें करने लग गए। एक घंटे के बाद मुझे कहीं बाहर जाना हुआ, जब मैं बाहर निकल के देखती हूँ वहीं खड़ा है। मैंने कहा भैया आपके पास तो टाइम ही नहीं था, अभी तक यही खड़े हो। घड़ी में देखकर कहते अच्छा इतना समय हो गया, मुझे तो पता ही नहीं चला। क्या करे, मेरा दोस्त मिल गया, बहुत समय के बाद मिला, बातें करने में पता ही नहीं चला। यार आगे निकल गए। दूसरे दिन जब वो भाई आए, हमने पूछा ऐसी क्या बातें थी, एक घंटे तक आप बातें करते रहे, समय का ध्यान भी नहीं रहा आपको और आपको तो बिल्कुल टाइम नहीं था। कहा क्या करे बहन जी, बहुत पुराना दोस्त था मेरा। अच्छा, फिर हमने पूछा क्या बातें किया, तो सोच में पड़ गए क्या बातें किया मैंने एक घंटा उसके साथ। फिर मुझे कहने लगा बस यूं ही बातें चल रही थी। भगवान के साथ भी यूं ही बातें करो ना, दोस्त बना करके देखो। कई बातें ऐसी होती है जो माँ बाप से छिपाएंगे, उनको नहीं बताएंगे, लेकिन अपना प्रिय दोस्त जो होगा उसके आगे दिल को खाली कर देंगे, सब बातें उसको सुना देंगे, अच्छी भी हो बुरी भी हो कैसी भी हो वो भी उसको सुना देंगे। भगवान को भी दोस्त बनाकर देखो, जो भी दिल की बातें हो उसके साथ बातें करो। दुनिया के दोस्त तो फिर भी आज है कल धोखा दे देंगे, कोई बात कोई मित्र को या अपने नजदीकी दोस्त को सुनाते हैं जब, और उसको कहते हैं ये मेरी पर्सनल बात है किसी को सुनाना नहीं, ये तुम मेरा खास दोस्त है इसीलिए मैं तुझे कह रहा हूं, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि उसने भी मुझे खास दोस्त माना ही है, उसका कोई और खास दोस्त हो सकता है। और वो फिर उसको कहता है इसकी पर्सनल बात है, कहना नहीं किसी को, मैं सिर्फ तेरे को कह। और जब वो घूमते घूमते अपने पास आती है और उस वक्त लगता है कि इसने इतना बड़ा विश्वासघात किया, मैंने इसको अपना समझ करके सुनाया, और उसको जब कहने जाते हैं कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया, मैं मना किया था तुम्हें सुनाने के लिए फिर भी सुना दिया, लेकिन अरे सोचने की बात है कि मेरी अपनी बात मैं अपने पेट में नहीं समा सकी, तो क्या गारंटी है कि मेरा दोस्त मेरी अपनी बात को समाएगा। इसलिए दुनिया के दोस्त के ऊपर विश्वास नहीं कर पाते हैं, लेकिन भगवान को अपना दोस्त बनाकर देखो, वो सागर है, ऐसा समा लेगा अंदर में, किसी को बताएगा भी नहीं और सॉल्यूशन दे देगा, मददगार बन जाएगा, इतनी सूक्ष्म रीति से मदद कर देगा, बस उसके आगे वो बात रख दो। नरसिंह मेहता का मामेरू कैसे पूरा हो गया, उसकी लड़की का मामेरू कैसे पूरा हो गया, उसने बात उसके सामने रख दी, उसको सुना दिया, बस फिर उसकी जिम्मेवारी है। तो परमात्मा जब हमारा मित्र बन जाता है, अर्जुन ने भी जब भगवान को अपना मित्र बना दिया तो वो सारथी बनने को तैयार हो गया। तो भगवान हर कदम पर हमारा मददगार बन जाता है, इसलिए भगवान के साथ भी ये दोस्ती का संबंध जोड़ कर देखो। और खूब बातें कर सकेंगे, चलते उठते बैठते, खास बैठने की भी जरूरत नहीं, उठते बैठते चलते फिरते निरंतर उसके साथ कनेक्शन जुटा रहेगा और बातें होती रहेगी, बहुत सुंदर सुंदर अनुभव करते रहेंगे। पांचवा संबंध है प्रियतम का संबंध, जो मीरा बाई ने उसके साथ जोड़ा। कभी उसको प्रियतम बनाकर देखो, इतना सुंदर अनुभव होता है। जीवन में किसी का जीवन साथी होता है और उसके साथ में जो बिताए हुए पल होते हैं वो कैसे एक यादगार जीवन में बन जाते हैं। परमात्मा को भी अपना प्रियतम जब बना देते हैं तो उसके साथ बीता हुआ एक एक पल जैसे जीवन के अंदर भी एक सुवर्ण यादव की तरह छप जाते हैं और बहुत सुंदर अनुभव होता है। और छठा संबंध कि उसको बच्चा बनाकर देखो, भगवान भी कितना सुंदर बच्चे का एक रोल प्ले कर सकता है। एक बार एक माताजी थे, आते थे रोज क्लास में, सुबह सुबह पहुंच जाते थे सेंटर पर। हर रोज सुबह में 6:30-7 बजे क्लास आरंभ होता है तो रोज आकर के पहला नंबर, उसकी सीट फिक्स थी, पहला नंबर आके बैठ जाती। उसको 3 बेटे थे, परंतु कभी भी उसको पूछते थे माताजी कितने बच्चे हैं तो कहती थी 4 बच्चे हैं, चौथा बेटा उसने भगवान को बनाया था। जो कुछ लाती करती थी 4 हिस्सा करती थी और उसी हिसाब से बांटती रहती थी। धीरे धीरे वो बच्चे बड़े होते गए, कोई कहां चले गए, कोई कहां चले, नौकरी धंधे के कारण माताजी अकेले रह गए। लेकिन फिर भी उसको एक प्रकार की संतुष्टि थी कि चौथा बेटा मेरे साथ है। एक दिन वो सुबह क्लास में आए नहीं, सोचा कि कहीं माताजी की तबीयत ऊपर नीचे न हो गई हो, देखना चाहिए, अकेले हैं और कोई है नहीं साथ में, तो सोचा क्लास के बाद जाकर के मिलके आएंगे। जैसे ही क्लास के बाद बाहर निकले तो देखा सामने से वो आ रहे थे। पूछा, माताजी आज सवेरे नहीं आए, इस वक्त आए? तो कहने लगी, आज मैं घर में ही अपने बेटे के साथ बैठी थी। हमने सोचा आया होगा 3 में से कोई एक, पूछा कौन सा वाला आया, कहते अरे उनको कहां फुर्सत है यहां आने की, मैं तो चौथे बेटे के साथ बैठी थी। क्या हुआ? तो बताया, रात से मुझे बुखार बहुत चढ़ा था, इतना बुखार था, सारी रात मेरी ऐसी ही गई, सुबह में इतनी कमजोरी लग रही थी, उठी भी लेकिन हिम्मत नहीं हुई, गला सूख रहा था, इतनी भी हिम्मत नहीं थी तो किचन तक जाकर के पानी का ग्लास लेकर के पियो। फिर क्या हुआ? तो कहने लगे, बस उसको कहा, अरे बेटा एक ग्लास पानी नहीं पिलाएगा क्या? फिर कहा, कोई आया थोड़ी, लेकिन जो गला सूख रहा था गीला हो गया और मुझे संतुष्टि हो गई जैसे मैंने पानी पिया। फिर क्या हुआ? फिर लेट गई, बोला तो ऐसे लगा जैसे कोई पैर दबा रहा है, उठकर देखती हूं कोई है नहीं, लेकिन बराबर एहसास हो रहा था। फिर ऐसा लगा जैसे कोई सर दबा रहा है और उसके बाद ऐसी नींद आ गई जो बस 2 घंटा इतनी अच्छी नींद आई। उठकर देखती हूं न बुखार है न कमजोरी है, कुछ भी नहीं है, और ऐसी ताकत आ गई जो यहां तक पहुंच गई। कहा, ये चौथा बेटा तो ऐसा है जो ऐसी सेवा करता है, ऐसा हाथ घुमाता है जो बस कोई भी दुख दर्द हो बुखार हो बिना गोली टिकी के बस खत्म हो जाता है। उस मां को इतना प्यार आता था, परमात्मा को बच्चे रूप में देखती थी और हर वक्त ये अनुभव करती थी जैसा मेरा बेटा मेरे साथ है ही है, कदम कदम जैसे मुझे चला करके यहाँ तक भी पहुँचा देता है और इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनाता है का सारा दिन मेरा समय ऐसा गुजर जाता है। तो भगवान को अपना बेटा बनाकर देखो, दुनिया के बेटे तो फिर भी समय पर सेवा नहीं कर पाएंगे, मजबूरियां होंगी, लेकिन ये बेटा ऐसा है जो कैसी भी स्थिति होंगी आपने दिल से उसको याद किया हाजिर हो जाएगा और आपकी सेवा भी करेगा। और जैसे जैसे ये संबंधों के आधार पर अनुभव प्राप्त करते जाएंगे और प्यार बढ़ता जाएगा, फिर देखो मन कैसे उसमें समा जाता है, खो जाता है। कोई भी कार्य करते होंगे लेकिन मन खोया हुआ रहेगा। इतना प्यार, और जितना प्यार हम करते हैं तो भगवान भी उतना ही प्यार हमें करता है। और ये अनुभव भी इस कलियुगी दुनिया के अंदर बहुत न्यारा और निराला होता है। ये है मेडिटेशन। मेडिटेशन कोई बड़ी चीज है ही नहीं। जब चाहो आप उसको जिस संबंध के रूप में याद करना चाहो, कभी बच्चे बनकर याद करो, कभी स्टूडेंट बनकर के पढ़ाई करो, कभी सतगुरु के सामने शिष्य बनकर के उसके आशीर्वाद को प्राप्त करो, कभी उसको दोस्त बना दो, कभी उसको जीवन साथी बना दो, प्रियतम बना दो, और कभी उसको बच्चा बना दो। सर्व संबंधों का सुख प्यार उस एक परमात्मा से प्राप्त कर सकेंगे और इतना सुंदर जीवन, हीरे जैसा जीवन और मोती जैसा मन हो जाएगा। तो ये है राजयोग। राजयोग कोई बड़ी चीज नहीं है, सहज कर सकते हैं, कहां भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, बस संबंध जोड़ो और उसको याद करो। ठीक है, ओम शांति। थोड़ी क्षणों के लिए हम राजयोग का अभ्यास करेंगे, परमात्मा के साथ सर्व संबंधों को जोड़ेंगे और उस परमात्मा को उस संबंध के आधार पर याद करेंगे। ओम शांति। अपने मन को थोड़ी क्षणों के लिए बाह्य सभी बातों से, आवाजों से समेट लेते हैं, स्वयं को आत्मनिश्चय करते हैं। इस शरीर में मैं अति सूक्ष्म दिव्य ज्योति बिंदु आत्मा हूं। अंतर चक्षु से स्वयं को प्रकृति के मध्य में देख रही हूं। धीरे धीरे अपने मन और बुद्धि को इस देह रूपी वस्त्र से अलग कर चलते हैं। परमात्मा पिता के और परम धाम में, जहां चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ है, मैं आत्मा परमात्मा के सानिध्य में स्वयं को देखती हूँ। एक दिव्य प्रभा मंडल में स्वयं को देख रही हूँ। परमात्मा के साथ सर्व संबंधों का सुख अनुभव करती हूँ। वही पिता परमात्मा मेरे मात पिता है। शिव बाबा है उस मात पिता से अथाह स्नेह असीम सुख के रूप में प्राप्त करती हूँ। कितनी न भाग्यशाली हूँ जो उस मात पिता के स्नेह के पात्र आत्मा बन गई। वही मेरे परम शिक्षक भी है। जो अथाह ज्ञान देकर मुझ आत्मा को भी अपने समान त्रिकालदर्शी बनाते हैं। वही मेरे परम सतगुरु भी है। सतगुरु के वरदानों को प्राप्त करते हुए मैं आत्मा वरदानी बन जाती हूँ। भाग्य विधाता परमात्मा मेरे भाग्य को परिवर्तन करने लिए श्रेष्ठ विधि बताते हैं।